الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا عمدہ اور پاکیزہ اخلاق سے انسانیت کو روشناس کرانا اور اس کی تعلیم اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق میں इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं पाकीज़ा अखलाक को पाए तकमील तक पहुँचाऊँ। और कुरान पाक में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बासत के मकासिद को बयान फरमाया है, सबसे पहला वो मौका जब हजरत इब्राहिम अल्लाह नबियना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर के मौके पर दुआ की थी, रब्बना वबसिम रसूलम मिनहु। उस दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकासिद बासत में से एक मकसद वयुज़क्की ही कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों को गंदे अखलाक व आदात से पाक और साफ करने का काम भी करेंगे। ये भी गोया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मकासिद बासत में से है। तो पाकीज़ा अखलाक की तालीम और गंदे और बुरे अखलाक व आदात से लोगों को दूर रखना, पाक साफ करना, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बासत के अजीम मकासिद में से एक मकसद है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन पाकीज़ा अखलाक की इंसानियत को तालीम दी उनमें एक इफ्फत व इस्मत है। इफ्फत का मतलब यह है कि आदमी अपने आप को बेहयाई और बुरी वो खसलतें जो आदमी को फवाहिश और जिना वगैरह के तरफ ले जाने वाली हो उससे बचाने का एहतमाम करे। कुरान ने भी बारी ताला कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा वा बतन, ये नबी आप कह दीजिए कि मेरे रब ने बेहयाई और बेशर्मी के कामों को हराम करा दिया, जो खुले हुए हैं वो भी और जो छुपे हुए हैं वो भी। जमाने जाहिलियत में कोई आदमी खुलकर अगर कोई बुराई करता, जिना वगैरह का इर्तिकाब करता तो उसको तो बुरा समझा जाता था, लेकिन छुप छुपा कर अगर ऐसी हरकत की जाती थी तो उसको काबिल एतराज नहीं समझते थे। कुरान ने आकर के बतलाया कि ये हरकत अपनी जगह पर शनी गंदी और बुरी है, चाहे खुल करके हो या छुप करके हो। हर बेहयाई और बेशर्मी के काम को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। और पाकीज़ा अखलाक में इफ्फत और इस्मत यानी जिना और जिना तक पहुंचाने वाले तमाम असबाब वसाइल, उन सब को कुरान और हदीस में लफ्ज फवाहिश के अंदर शुमार किया गया है। किसी अजनबी और पराई औरत के साथ मिलना, उसको शहवत की नजर से देखना, उसके साथ बातचीत करना, उसकी तरफ चल कर के जाना, उसकी बातों को सुनना, उसको देखना, ये सारे काम जो आदमी को जिना तक पहुंचाने वाले हैं, उन तमाम को कुरान फवाहिश से ताबीर करता है और उसको हराम करार दिया गया है। इन सब चीजों से बचने का नाम ही कुरान और हदीस की इस्तिलाह में इफ्फत और पाक दामनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो बुनियादी तालीमात हैं उनमें इफ्फत और पाक दामनी को बड़ा अहम मकाम हासिल है। चुनांचे बुखारी शरीफ में रिवायत है, सुलह हुदैबिया के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور صلح کی وجہ سے مکہ مکرمہ والوں کی طرف سے ہونے والے حملوں سے ایک اطمینان حاصل ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے اس زمانے کے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام خطوط ارسال کی. چنانچہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، چاہے وہ روم کا قیصر ہو یا ایران کا کسرا ہو یا حبشہ کا نجاشی ہو یا اور اس زمانے کے جتنے بھی بادشاہ تھے، حکمران تھے، چھوٹے بڑے، سب کے نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت ایمان اور دعوت اسلام کے خطوط روانہ کی. ان خطوط میں خط قیصر روم، یہ قیصر اس زمانے میں روم کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب تھا اور نام اس کا ہرقل تھا، اس کے نام ایک خط بھیجا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پورے واقعے کو بخاری شریف کے بالکل شروع میں جو پہلا ہی باب قائم کیا ہے، باب کیف کان بدو وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. کتاب التفسیر میں بھی اس واقعے کو انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. واقعہ تو بڑا لمبا ہے، مختصر جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نام مبارک اور آپ کا وہ بابرکت خط جب قیصر کے پاس پہنچا، تو اس زمانے میں قیصر بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے یروشلم آیا ہوا تھا. اس نے ایک منت مانی تھی، ان کی ایران والوں کے ساتھ جنگ چلتی تھی اور اس جنگ میں کچھ سال پہلے قیصر کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی. اپنی اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بھرپور تیاریاں کی تھی اور منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے ان ایرانیوں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی تو میں پیدل بیت المقدس کی زیارت کروں گا. چنانچہ اس کی وہ تمنا پوری ہوئی، اپنی اسی منت کو پورا کرنے کی غرض سے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا، ورنہ اس کا اصل پائے تخت اور کیپیٹل جو تھا وہ تو قسطنطنیہ تھا. یہ یروشلم شام کے اندر واقع ہے، یروشلم جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اس زمانے میں اس کی حکومت کے ماتحت تھا، وہاں آیا ہوا تھا اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے پاس پہنچایا گیا. یہ قیصر روم اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا. بخاری شریف کے شراح نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں عیسائیوں میں کتب آسمانی کے دو بڑے عالم تھے، ایک تو یہ قیصر جس کا نام ہرقل تھا اور دوسرا اس زمانے کے جو عیسائیوں کا بڑا لاکھ پادری جس کو اسقف الاساقفہ کہتے تھے اور نام اس کا زغاتر تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا. گویا اس زمانے کے دین عیسائیت کے دو بڑے ماہر عالم یہ، ان میں سے یہ خود بادشاہ وقت. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا اور اس کو بتایا گیا کہ یہ ایسی شخصیت نے بھیجا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی اور پیغمبر کہتے ہیں، تو قیصر نے اس خط کو کھول کر پڑھنے سے پہلے اس خط کو بھیجنے والی شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھا. اس لیے کہ خط جس شخصیت کی طرف سے آیا ہو اس شخصیت کے مقام اور مرتبے کا اگر اندازہ ہو جائے تو اس سے خط کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے اس نے اس خط کو کھول کر پڑھنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق معلومات حاصل کرے کہ یہ کون ہے. اس نے اپنے آدمیوں سے اس زمانے میں شام کا جو علاقہ تھا اسی کے ماتحت تھا اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ خط جہاں سے آیا ہے یعنی عرب سے وہاں کے کچھ لوگ یہاں مل جائیں گے تاکہ ان لوگوں سے اس خط بھیجنے والی شخصیت کے متعلق تحقیق کی جا سکے. تو قیصر کے آدمیوں نے بتایا کہ ہاں وہاں سے قافلے تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے ہیں. مکہ والوں کی معاش اور گزر بسر کی بنیاد تجارت پر تھی اور سال بھر میں وہ دو سفر تجارت کے لیے کرتے تھے, سردی کے زمانے میں یمن کا اور گرمی کے زمانے میں شام کا. کیونکہ شام سرد علاقہ ہے سردی کے زمانے میں وہ وہاں جا نہیں پاتے تھے سردی کی شدت کی وجہ سے. اور اللہ تعالی نے انہی دو تجارتی سفروں کے اوپر ان کی زندگی کا معاش اور مدار رکھا تھا جس کو قرآن میں سورہ قریش میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پر ذکر بھی کیا ہے. بہرحال قیصر کے آدمیوں نے کہا کہ وہاں سے ایک قافلے آتے ہیں ہم ذرا معلوم کرتے ہیں. چنانچہ جب پتا چلایا تو معلوم ہوا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ان کی سرداری میں وہاں شام پہنچا ہوا ہے. ابو سفیان اس وقت تک اسلام لائے نہیں تھے بلکہ مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے ان کے وہ سب سے بڑے سردار تھے. گویا حزب مخالف کے لیڈر وہی تھے اور اتفاق کی بات تجارتی قافلہ لے کر وہی آئے ہوئے. قیصر کے آدمیوں نے اس پورے قافلے کو لا کر بادشاہ نے باقاعدہ اپنا دربار سجایا اور قیصر کے آدمیوں نے وہ پورا قافلہ لا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. جب وہ لائے گئے تو بادشاہ نے پہلا سوال تو یہ کیا اپنے ترجمان دوبھاشی انٹرپرنٹر کے ذریعے سے کہ بھائی جس شخصیت کی طرف سے یہ خط آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور پیغمبر کہتے ہیں ان کے ساتھ خاندانی اور نسبی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب تم میں کون ہے. اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی نسبی اور خاندانی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھی. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کے جو دادا تھے عبد مناف ان کی چار اولاد تھی ہاشم عبد شمس نوفل اور مطلب. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاشم کی اولاد میں سے تھے اور ابو سفیان یہ عبد شمس کی اولاد میں سے تھے. گویا نسبی اور خاندانی اعتبار سے بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قافلے والوں میں سب سے زیادہ قریب تھے. یہ اس لیے بھی پوچھا تھا کہ جو جتنا قریب ہوگا وہ اندرونی حالات سے زیادہ واقف ہوگا. ایک آدمی کا خاندان کا آدمی اس کے حال سے زیادہ واقف ہو سکتا ہے پرائے کے مقابلے میں. بہرحال جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد ابو سفیان کو آگے بٹھایا ان کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا اور بہت سارے سوالات. یہ روایت تو بہت لمبی چوڑی ہے ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اس مشن کے متعلق آپ کی اس دعوت کے متعلق قیصر نے 10 سوالات کیے اور ان تمام سوالات کے جوابات ابو سفیان نے دیے. جب جوابات دیے جا چکے تو اس کے بعد قیصر نے उन दसों जवाब के ऊपर अपनी तरफ से तबसरा रिव्यू किया कि तुमने मेरे फला सवाल का ये जवाब दिया जिससे ये नतीजा निकलता है, फला सवाल का ये जवाब दिया जिससे ये नतीजा निकलता है। गोया उस सारे तबसरे और रिव्यू का खुलासा ये था कि कैसर ये बताना चाहता था कि तुम्हारे जवाब से मालूम होता है कि ये अल्लाह के सच्चे नबी है। खैर, ये सब जवाब, ये सब कुछ हो चुकने के बाद अखीर में कैसर ने अबू सुफियान से सवाल किया, माजा या मुरोकुम, कि ये नबी आपको किन चीजों का हुक्म देते हैं, उनकी तालीमात क्या है, वो किस चीज की दावत देते हैं। तो उसके जवाब में अबू सुफियान ने कहा, या मोरुना बिस्सलाते वस्सिदके वस्सिलते वल अफाफ, ये नबी हमको नमाज का हुक्म देते हैं और सच्चाई का, सच बोलने का हुक्म देते हैं और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने का, सिला रहमी का, वल अफाफ और पाक दामनी का हुक्म देते हैं। देखिए, मैं जो बताना चाहता हूँ ये है कि उस जमाने के सबसे बड़े बादशाह ने नबी करीम सलासन के एक सबसे बड़े दुश्मन को नबी करीम सलासन की तालीमात के मुतालिक जब पूछा और उन्होंने उसके जवाब में खुलासे के तौर पर जो बात कही उसमें जिन चार चीजों को बयान किया उसमें एक क्या है, अफाफ, पाक दामनी। गोया ये पाक दामनी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर बुनियादी हैसियत रखती है। अपने आप को जिना और जिना तक पहुंचाने वाले तमाम असबाब से बचाना, ये है अफाफ। नबी करीम सासू की दुआओं में भी इसका बड़ा अहतमाम है। ये दुआएं जो नबी करीम सासू की हैं, एक तरफ वो दुआएं भी हैं, साथ में तरबियत का भी काम देती है। चनांचे नबी करीम सासू की दुआओं में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गना, कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ हिदायत का, तकवे का, गुनाह से बचने का, इफ्फत और पाक दामनी का। देखो, दुआ में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को ये सिखला रहे हैं कि अल्लाह ताला से जिन कमालात और जिन खूबियों का हमें सवाल करना है, दुआ के जरिए से जो चीजें अल्लाह से मांगनी है उनमें ये भी है, क्या, अफाफ। एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अस्सेहत वल इफ्फत वल अमानत व हुस्नल खुल्क, ये अल्लाह मैं तुझसे तंदुरुस्ती का सवाल करता हूँ, वल इफ्फत और इफ्फत और पाक दामनी का सवाल करता हूँ। देखो, यहाँ पर भी इस दुआ में भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर पाक दामनी का तज़किरा किया। गोया अपनी दुआओं के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मत की तरबियत फरमा रहे हैं और उनकी जहन साजी कर रहे हैं कि अल्लाह से जो चीजें मांगनी चाहिए और जिन खूबियों का अल्लाह से सवाल करके अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए उनमें ये भी है, क्या, इफ्फत और पाक दामनी। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे वाकयात जिनमें अल्लाह के किसी बंदे की तरफ से पाक दामनी का जुहूर हुआ हो हजरत सहाबा के सामने बयान करते थे। इसलिए कि ऐसे वाकयात जब बयान किए जाते हैं तो उनको सुनकर सुनने वालों के दिलों में पाक दामनी की अहमियत और इस खूबी और इस सिफत को अपने अंदर पैदा करने का जज्बा पैदा होता है, उसकी तरजीब होती है। तिर्मिज़ी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत फरमाते हैं कि ये वाकया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आज तक ले गए, उससे ज्यादा मर्तबा सुना। जितनी मर्तबा आज से ज्यादा, कोई एक मजलिस में आठ मर्तबा थोड़ा सुनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ मजालिस में गोया उसको बयान करते होंगे, और ये कोई एक दो महीने की भी बात नहीं है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक्य को हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करने से पहले ये जुमला कहती कि एक दो मर्तबा सुना होता तो मैं बयान न करता, सात आठ से भी ज्यादा मर्तबा सुना है। क्या वाकया है? बनू इसराइल के अंदर एक आदमी का किफल, किफल नाम, अल्लाह ताला ने उसको बहुत दौलत और सरवत अता फरमाई थी। ये दौलत और सरवत जो है ना, वही असल खराबियों की जड़ है। अल्लाह ताला इसको किसी के हक में खैर और भलाई का जरिया बना दे तो ये उसके हक में बड़ी सआदतमंदी की चीज है, वरना उसी की वजह से आम तौर पर आदमी अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर उतर आता है। चुनांचे उसके पास भी दौलत की कसरत थी, जिसके नतीजे में कोई गुना ऐसा नहीं था जो वो करता न हो, हमेशा गुनाहों में मुलव्वस रहता। एक मरतबा एक औरत जिसके बच्चे फाका में मुब्तला थे, भूखे थे, और फाका की वजह से भैया अब ऐसा मालूम होता था कि जिंदा नहीं बचेंगे, अपने बच्चों की जान बचाने की गरज से वो घर से इस उम्मीद के साथ निकली कि कोई खुदा का बंदा मुझे कुछ रकम दे तो मैं उसके जरिए से अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करूं। तो यही किफल मिल गया उसको। उस औरत ने इस किफल से अपनी हाजत बयान की कि मेरे बच्चे फाके से हैं, भूखे हैं, और उसकी वजह से अब गोया खतरा है कहीं खत्म ना हो जाएं, आप मेरी मदद कीजिए। अब इसका जहन तो बुराई का ही था, जिंदगी गुनाहों में ही गुजर रही थी, और ये औरत भी हसीनो जमील थी। उसने मौके से फायदा उठाते हुए उस औरत के साथ ये शर्त लगाई कि अगर तू मुझे मेरी ख्वाहिश पूरा करने का मौका दे तो मैं तुझे रकम देता हूं। अब वो औरत बिचारी हालात से मजबूर थी अपने बच्चों की वजह से, उसने उसकी शर्त को कबूल कर लिया और उसने रकम दी शर्त के मुताबिक 120 दीनार का, बाज रिवायतों में तस्करा आता है। रकम मिलने के बाद शर्त के मुताबिक इसने मुतालबा किया, क्या जब तूने मेरी शर्त मंजूर की है तो मुझे अपनी ख्वाहिश पूरा करने का मौका दे। चुनांचे जब वो अपनी ख्वाहिश पूरा करने की गरज से उसकी तरफ आगे बढ़ा तो देखा कि उस औरत के ऊपर लर्जा तारी हो गई, कपकपी तारी हो गई, वो कांपने लगी और बेतहाशा रोने लगी। ये मंजर देखकर वो किफला क्या कहता है कि भाई मैंने तेरे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की, मैंने जो तेरे साथ शर्त लगाई थी तूने रजा और रगबत से खुशी से मेरी शर्त को मंजूर किया था, मैंने कोई तेरे ऊपर जबर नहीं किया, फिर भी मैं देख रहा हूं तेरा ये हाल है, ऐसा क्यों? तो उसके जवाब में वो औरत कहती है कि ऐसा काम जिंदगी में मैंने कभी किया नहीं है, आज अपने बच्चों के फाके की वजह से मजबूर होकर तेरी ये शर्त मानकर मुझे उसके लिए रजामंदी जाहिर करनी पड़ी थी, इसलिए इस काम के तसव्वुर से मुझे कपकपी तारी है और मैं बेचैन हूं, कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। उसका ये जवाब सुनकर उसका दिल भी पिघल गया। तौबा का वक्त आया था, अल्लाह ताला तौबा के लिए भी असबाब मुहैया करते हैं। तो ये उसका ये जवाब सुन करके उसने फौरन से अपनी हरकतों से तौबा की और उस औरत को कहा कि ये रकम जो मैंने तुझे दी है वो भी माफ है, तू जा और अपने आज पूरी जिंदगी की ये जो बुराइयां और गुनाहों के काम थे उसी पर नदामत, अफसोस और पछतावे की कैफियत के साथ वो अपने घर जाकर सो गया और उसी रात में उसका इंतकाल हो गया। बनी इसराइल के साथ अल्लाह तबारक व तआला का एक मामला ये भी था कि उनमें से कोई आदमी कोई गुनाह करता आया खतरनाक किस्म का, तो अल्लाह ताला की तरफ से सुबह के वक्त वो गुनाह उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि इस आदमी ने ये गुनाह किया है, जिसकी वजह से लोग उसके उस गुनाह से वाकिफ होते थे और उसके हक में एक रुसवाई होती। ये तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस उम्मत मोहम्मदिया के साथ ये एहसास और इकराम का मामला फरमाया कि उसके गुनाहों का किसी के सामने इजहार अल्लाह ताला की तरफ से किया नहीं जाता। वयदाउ अनहुम इसरहुम वलअगलाल अल्लती कानत अलैहिम, कुरान पाक की इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने यही बात लिखी है। ये भी अल्लाह का कितना करम है कि आदमी की बीवी उसके साथ रहती है, बच्चे उसके घर में रहते हैं, उसका पक्का दोस्त हमेशा उसके साथ रहने वाला, लेकिन ये कैसे कैसे गुनाह करता है उनको भी पता नहीं चलता, अल्लाह उनके ऊपर भी खोलते हैं। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में। तुम्हारा बनी इसराइल के साथ अल्लाह का ये मामला था कि कोई गुनाह करता बड़ा गुनाह ऐसा तो उसके दरवाजे पर लिखा जाता था, जिसकी वजह से कुदरत की तरफ से ये लिख दिया जाता था और उसकी रुसवाई होती। और कोई अगर किसी गुनाह से तोबा करता और उसकी तोबा अल्लाह के यहाँ कबूल होती तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था। चुनांचे ये किफल ने वो जो रात को वाकया पेश आया और उसकी तबीयत के ऊपर नदामत पछतावे की जो कैफियत हुई और अपने गुनाहों से तौबा की और इसी हाल में उसका इंतकाल हुआ, तो सुबह को लोगों ने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने किफल की तौबा कबूल कर ली और उसके जन्नत में दाखिल कर दिया। लोग कहने लगे यार ये तो बड़ा बुरा आदमी था, ये कैसे जन्नत में पहुंच गया। बहरहाल ये वाकया तिर्मिजी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत से मनकूल है। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में बतलाया कि इब्न उमर फरमाते कि ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कितनी मरतबा सुना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मौका ब मौका अपनी मुबारक मजलिसों में इस वाकये को हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के सामने क्यों बयान करते थे? हम और आप समझ सकते थे कि आपका मकसद इस वाकये को बयान करने से पाक दामनी की अहमियत और अल्लाह ताला के यहाँ पाक दामन रहने वाले के लिए कितना ऊंचा मकाम है वो बतलाने के लिए। और इस वाकये के जरिए गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दिलों में इफ्फत और इस्मत और पाक दामनी की अहमियत मरकूज करना चाहते थे और उनके वास्ते से कयामत तक आने वाली पूरी उम्मत को यह सबक देना चाहते थे। एक तो ये वाकया हदीस में आता है, एक और वाकया भी हदीस में है बुखारी शरीफ में, जिसको हदीस गार कहा जाता है। गार वो खोह को कहते हैं, गुफा जिसको गुजराती में बोलते हैं, पहाड़ के अंदर जो होती है। तीन आदमी एक मरतबा जा रहे थे और अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज थी, बारिश से बचने के लिए वहां करीब पहाड़ के अंदर देखा एक गार है अंदर, तो ये सोच करके कि अंदर चले जाएं जब बारिश रुकेगी तो फिर बाहर निकलकर अपना सफर आगे हम जारी करेंगे। अंदर गए, अब बारिश के दौरान तेज हवा चली और उस हवा के नतीजे में एक बहुत बड़ी चट्टान, बहुत बड़ा पत्थर वो घर के दरवाजे और दहाने के ऊपर आकर फिट हो गया। वो इतना बड़ा था कि 100 आदमी भी उसको खिसका सकते नहीं थे, बिल्कुल एकदम बंद। अमीर हजरात ने देखा कि अब तो हमारी मौत यकीनी है, बाहर वालों को भी कोई पता नहीं चलेगा और चले तो भी वो कैसे इसको हटाएंगे। तब ये तीन आपस में बैठ करके मशवरा कर रहे हैं कि इस मुसीबत से नजात हासिल करने का क्या तरीका और तदबीर इख्तियार की जाए। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली। इन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि भाई देखो, आदमी अपनी जिंदगी में बाज आमाल ऐसे खालिस करता है जो अल्लाह के वास्ते ही होते हैं, जिसमें उसके नफ्स की किसी जो है मफाद को और किसी इसको दखल, गरज को दखल नहीं होता। हर आदमी बड़े से बड़े गुनेगार को, गुनेगारों से भी ऐसे आमाल सुदूर होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे ही आमाल की बुनियाद पर लोगों की किस्मत के फैसले करते हैं। तो बहरहाल इन तीनों आदमियों ने आपस में ये मशवरा किया कि भाई तुम में से, हम में से हरे अपनी जिंदगी को सोचे कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अमल किया हो खालिस अल्लाह के लिए, जिसमें अपने नफ्स की गरज को कोई दखल न हो, उस अमल का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस चट्टान को हटा ले, वरना दुनिया की कोई ताकत हमको आज बचा सकती नहीं। चनांचे तय हुआ तो एक आदमी ने उसमें से दुआ शुरू की कि अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप थे दो, और मेरी औलाद, मेरी बीवी बच्चे भी थे, मेरा जरिया माश जो था वो मवेशी जानवर उनको चराता था और उन्हीं के दूध से मेरा गुजर बसर होता था। मैं रोजाना अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था, शाम को जब चरा कर लेकर आता था तो उनका दूध दुहने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत में पेश करता था, और वो जब सैर हो जाते उसके बाद अपनी बीवी बच्चों को देता था और खुद पीता था। माँ बाप से पहले कभी भी अपने बीवी बच्चों और खुद मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये मेरी आदत थी। कहता है एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने जानवरों को चराने के लिए दूर ले गया, जब वापस आया तो सूरज डूब चुका था और रात का अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका था। आने के बाद मैंने धोया दूध धोकर आदत के मुताबिक बर्तन लेकर माँ बाप की खिदमत में हाजिर हुआ, लेकिन रात होने की वजह से उनकी आंख लग चुकी थी, यानी वो सो गए। अब मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको उनकी नींद खराब करूं उठाऊं, इसलिए मैंने उठाया नहीं, और वो पिए उससे पहले अपने बाल बच्चों और खुद को पीना ये भी मुझे गवारा नहीं हुआ। बस मैं वो दूध का बर्तन लेकर उनके बिस्तर के पास खड़ा हूँ, मेरे बच्चे मेरे पांव के पास, मेरे पांव से लिपट कर रो रहे हैं और बेचैन है भूख से, लेकिन मैंने तय कर लिया था जब तक के माँ बाप पहले नहीं पिएंगे वहां तक इनको पिलाऊंगा नहीं। यहाँ तक कि सुबह को जब वो उठे तब पिलाया और फिर इनको दिया। अल्लाह तू जानता है कि ये अमल मैंने खालिस तेरी खुशनुदी और रजामंदी के लिए किया था, अगर ये है तो तू इस पत्थर को, चट्टान को इतना थोड़ा हटा दे कि हमें आसमान नजर आ गए। चुनांचे इस दुआ का करना था कि वो चट्टान थोड़ी सी हट गई, लेकिन इतनी नहीं कि जिससे ये दोनों ये निकल सके। अब दूसरे ने दुआ शुरू की, दूसरे ने ये दुआ शुरू की कि ए अल्लाह तू जानता है मेरी एक चचाजाद बहन थी जो बड़ी हसीन और जमील थी और मैं उस पर आशिक था, और मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि मुझे अपनी ख्वाहिश उससे पूरा करने का मौका मिले, लेकिन ऐसा कोई मौका मुझे मिलता नहीं था। एक मर्तबा किसी जरूरत की वजह से, यानी माली जरूरत की वजह से मजबूर होकर वो मेरे पास माल कर्ज पैसा लेने के लिए आई, तो मैंने उससे एक शर्त लगाई कि तू अगर मेरी ख्वाहिश पूरी करने का मुझे मौका दे तो मैं तुझे ये रकम देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत भी बहुत थी, वो भी मजबूर थी। उसने मेरी शर्त मान ली और 60 दिनार या जो भी है उनको दिए। उसके बाद शर्त के मुताबिक मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जब उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, आगे बढ़ा, तो उस मेरी चचाजात बहन ने कहा, अल्लाह से डरो और ये हरकत मत करो। तो उसका ये जुमला सुनकर फौरन मेरे दिल पर एक नदामत सी तारी हुई और मैंने तौबा की और उसको कहा, ये पैसे दिए हैं वो भी माफ में जाओ, और ये इस हरकत से मैं बाज आ गया। ये कहकर उसने दुआ की कि अल्लाह, ये अमल मैंने अगर तेरी खुशनुदी के लिए किया था तो इस चट्टान को कुछ और हटा दे, चुनांचे वो और हट गई। और तीसरे आदमी का एक, उसने कहा, अल्लाह मैंने एक मरतबा एक काम करने के लिए एक मजदूर तजवीज किया और उससे काम लिया, और काम हो चुकने के बाद जो मजदूरी तय की थी, गल्ला था वो, अनाज था, गेहूं होंगे, चावल होंगे, जो भी हो, वो लेने मैंने जब देना चाहा तो उसने लेने से इनकार किया और चला गया। तो उसके चले जाने के बाद वो जो मजदूरी वाला गल्ला था अनाज, मैंने उसको उसकी अमानत समझकर अपने गल्ले के साथ उसको भी बोना शुरू किया। अपने खेत में ना अपना गल्ला बोता था उसको भी बोया, वो बोया, उससे पैदा हुआ, फिर बोया, फिर पैदा हुआ, उससे मैंने गायें खरीदी, बकरियां खरीदी और जानवर खरीदे, और चरवाहा जो है गुलाम वो भी खरीदा, एक बहुत बड़ा बोया, कई जानवर पूरा एक मैदान भर जावे इतने उससे हुए। एक मुद्दत के बाद वो आदमी आया और कहने लगा, भाई अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी दे ना, तू काय को रोके रखता है। तो मैंने उससे कहा, ये सब ले जा, और सब जितनी भी वो गायें और जो है बकरियां ऊंट वगैरह थे, मैदान भरा हुआ था। तो कहने लगा, मेरा मजाक काय को करता है। तो कहने, मैं मजाक नहीं करता, वाकया ये है कि तेरी मजदूरी के तौर पर मैंने जो गल्ला तुझे देना चाहा था वो तूने जब नहीं लिया तो उसको तेरी अमानत समझकर मैं उसको बोता रहा, और उसी से बढ़ते बढ़ते ये सब हुआ है। चुनांचे मेरे इस कहने पर वो ले गया, अल्लाह मैंने अगर ये तेरे लिए किया था खालिस तो अब इतना खोल देकर निकल जाओ। वो फिर चट्टान इतनी हल हट गई कि तीनों निकल गए। ये वाकया बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगली उम्मतों के जो वाकयात बयान किए हैं उसमें है। इस वाकये की शरह में वो दूसरे नंबर का जो किस्सा जो अपनी चचाजात बहन के साथ उसकी शरह करते हुए बुखारी की शरह करने वाले उलमा ने लिखा है कि आदमी का अपने आप को इस हरकत से, यानी ऐसा मौका आदमी की जिंदगी में कभी ऐसे मौके आते हैं कि इस तरह की शक्लें पैदा होती हैं, तो जो अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर कर और अल्लाह की जात को सामने रखते हुए अपने आप को ऐसी हरकत से बचाने का एहतमाम करते हैं, तो अल्लाह ताला के यहाँ उनका मकाम बड़ा ऊंचा होता है, बड़ा ऊंचा। अल्लाह ताला ये नबियों की सिफत है। अल्लाह ताला उस आदमी से बड़े खुश होते हैं। हदीस में आता है बुखारी शरीफ की रिवायत, सबतुन युजिल्लुहुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला जिल्ला इल्ला जिल्ला, 7 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श के साये में उस वक्त जगह देंगे जब अल्लाह के साये के अलावा और कोई साया नहीं होगा। उसमें रजुलुन तलबत इमरातुन जातु मनसबिन व जमालिन व काला इन्नी अखाफुल्लाह, एक वो आदमी जिसको एक ऐसी औरत ने जो खानदानी औरत है, आबरू बाख्ता नहीं, जो धंधेदारी औरत है वो नहीं, वो तो सारी दुनिया को दावतें देती है, नहीं, खानदानी औरत और वो भी हसीनो जमील, उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसको दावत दी। लेकिन ये जवाब में यूं कहता है, इन्नी खाफुल्लाह, मुझे तो अल्लाह का डर लगता है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो कयामत के रोज अल्लाह ताला ऐसे आदमी को अपने अर्श के साये में जगह देगी। ये देखिए, ये अपने आप को तन्हाइयों में, क्योंकि ऐसे गुनाह ऐसी तन्हाइयों में पेश आते हैं और ऐसे मौके, ऐसे मौके पर जब तक के दिल में अल्लाह का खौफ न हो, अल्लाह ताला की जात का इस्तेहजार न हो, ये तसव्वुर न हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, वहां तक आदमी अपने आप को ऐसी हरकतों से बचा नहीं सकता। उस पर अल्लाह ताला की तरफ से उसको बड़े इनाम से नवाजा जाता है, बड़े इनाम से नवाजा जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अहयाउर्रूम में एक वाकया, हजरत यूसुफ अल्लाह नबीना वाली सलात वसलाम का वाकया तो कुरान में है। ज़लीखा ने जो है जो उन पर आशिक हो गई थी अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए, जो है अपने आप को बना संवार कर उनके सामने पेश किया, दरवाजे बंद कर दिए, दावत पे दावत भी बुलाया, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए भागे। और कैसे भागे, ये भी एक अजीब नुक्ता है। यहाँ हजरात उलमा लिखते हैं कि देखिए, दरवाजे सब बंद कर दिए गए थे, ताले लगे थे, पर्दे डाल दिए गए थे, और फिर हजरत यूसुफ अल्लाह नबीना वाली सलात व सलाम से ज़लीखा ने यह मुतालबा किया था, तो भी उनके इस मुतालबे से बचने के लिए यूसुफ अलैहि सलाम भागे। हालांकि जानते हैं कि दरवाजे के ऊपर तो ताला लगा हुआ, दूसरा कोई होता तो यूसुफ तक भाग के कहां जाऊंगा, दरवाजे पर तो ताला है। लेकिन नहीं, गुना जितना अपने आप को दरवाजे तक तो दौड़ सकते हैं ना, आगे ताला है बाद में देखी जाएगी, लेकिन इतना कितना जहां है वहां से लेकर दरवाजे तक का जो डिस्टेंस है उससे तो उसमें तो भागकर अपने आप को इस बुराई से बचा सकते हैं। चुनांचे जितना बस में था, जितना उनकी ताकत में था, वो उन्होंने किया और दौड़ करके वहां पहुंचे। जब दौड़ करके पहुंचे तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों की मदद करता है। जो बंदा अपने आप को गुनाह से बचाना चाहे और जो है बचाने के लिए अपनी तौर पर जितनी तदबीर हो सकती है, अपने बस में जितना है वो कर गुजरे, तो फिर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते। यहां भी ऐसा ही हुआ, हजरत यूसुफ दौड़ कर दरवाजे तक पहुंचे, हालांकि दरवाजा बंद था, ताला था, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वहां पहुंचते ही ताला खुद टूटा और दरवाजा खुला और बाहर निकला। गुना जब उन्होंने ये हिम्मत की, ये इरादा किया और अपने आप को इस गुनाह से बचाने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक जो कुछ कर सकते थे उसको अमली जामा पहनाया, तो अल्लाह ताला ने भी उनके लिए हिफाजत का सामान कर दिया। ये दलील है इस बात की कि ऐसे हालात में भी जब कोई बंदा अपने आप को ऐसी बुराई से बचाने का एहतमाम करेगा तो अल्लाह ताला जो है उसके लिए रास्ता खोल देंगे। एक वाकया अजीब एक औरत का लिखा है तारीख में। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, एक औरत दुआ कर रही थी, या करीम अहद कल कदीम, ए करीम ए करीम, तेरा पुराना अहद और तेरा पुराना तूने जो मामला किया वो। क्या मैंने उस औरत से पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि एक मरतबा हमारा काफिला जो है एक कश्ती के अंदर जा रहा था। उस जमाने में बादबानी कश्तियां हुआ करती थी, यानी वो जो शड लगाते हैं वो कपड़े का, और उसमें हवा भरती है और हवा के जोर से कश्ती आगे बढ़ती है, वो मोटर वालियां ये जो कश्तियां नहीं थी, तो कभी हवा का रुख बदल जाए तो कश्ती इधर के बजाय उधर भी चली जाती थी। तो हमारा काफिला एक मरतबा, उस काफिले में मैं भी थी, मेरा बच्चा था, मेरे शौहर वगैरह थे, कहा कि वो कश्ती डूबी, सब उसमें ये हो गए, और एक कश्ती का एक तख्ता लकड़ी का मेरे हाथ में आया। अपने बच्चे के साथ उस तख्ते पर मैं पकड़ लिया उसको और दरिया में और मोजों में वो थपेड़े खा रहा। एक हमशीरी का हमारी कश्ती के अंदर था, उसने वो भी उसको हाथ में भी एक तख्ता आया और वो भी उस तख्ते पर बैठकर अपने उसने कहा मुझे जब देखा तो वो अपने उस तख्ते को हटाता हटाता मेरे पास आया और आकर मेरे तख्ते पर बैठ गया और मेरा मुझे बहलाने फुसलाने लगा बुराया काम करने के लिए। मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, ये सब मर गए, ये सब हलाकतें हुई, इतना खतरनाक माफिया पेश आया, समुन्दर के थपेड़ों में मैं और तू है, यहाँ भी तू नहीं डरता अल्लाह से और गुना से नहीं बचता। उसने कहा कि नहीं, वो तो बस बुरा एक ही था कि इसके साथ बुरा काम करेगा। औरत कहती है कि मेरे पास जो बच्चा था मैंने चुटकी उसकी ली ताकि वो रोए, बच्चे ने रोना शुरू किया, मैंने ये इसलिए किया था ताकि वो उस बच्चे के रोने की वजह से अपने इस मुतालबे से बाहर आ जाए। तो कहते हैं कि उसने क्या किया, वो बच्चा ले करके फेंक दिया समंदर में। अब मुझे कहा कि तब तो तुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। तो इतने में एक जानवर नमूदार हुआ और उस जानवर ने उसका सर अपने मुंह पकड़ा और वो समंदर के अंदर गायब हो गया। अब क्या तख्ते पर मैं अकेली हूं, वो तख्ता जो है लकड़ी का वो मोजों के थपेड़ों से एक किनारे पर जा लगा, वहां एक जजीरा था, तो वहां जजीरे में खाने पीने की चीजें थी। मैं 3-4 रोज वहां रही, आराम से रही, खाने पीने की चीजों को इस्तेमाल किया। इतने में मैंने देखा एक जहाज, बड़ा जहाज जो है वो बड़ी कश्ती वो दूर से आ रही है। तो जजीरे के एक टीले पर चढ़कर मैंने कपड़ा हिलाया तो वो कश्ती जो है इधर करीब आई, लेकिन कश्ती बड़ी होने की वजह से बिल्कुल किनारे पर आ सकती नहीं थी। तो वो जो छोटी कश्ती अंदर थी वो उतार कर वो लोग आए और मुझे अपने साथ उस कश्ती के अंदर बिठाया ले गए। कदम मैं उस कश्ती में पहुंची तो देखा कि मेरा बच्चा उसी में है। मैं जाके उस पर गिरी और उसको लिपटाया और रोने लगी और बहुत प्यार, लोग कहने लगे क्या बात है क्या बात है। तो कहा मैंने सारा किस्सा सुनाया तो कहा उन कश्ती वालों ने मुझे ये किस्सा सुनाया कि हमारी कश्ती अपनी आदत के मुताबिक सफर कर रही थी कि अचानक एक बड़ा जानवर नमूदार हुआ और उसकी पीठ के ऊपर ये बच्चा था और एक आवाज आई कि इस बच्चे को अपनी कश्ती में ले लो वरना तुम्हारी कश्ती डूबो दी जाएगी। तो कहा हमने बच्चे को ले लिया और आज ये बच्चा। तो अल्लाह ने गोया उसके इस अपने आप को गुनाह से बचाने के इरादे की वजह से अल्लाह ने उसकी जान भी बचाई, बच्चा भी बचाया और जो उसके साथ शरारत करना चाहता था उसको अल्लाह ने सजा भी दे दी। ये बहरहाल एक ज़िमनन याद आ गया मुझे किस्सा। मैं जो बयान करना चाहता था, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम के अंदर वाकया लिखा है, हजरत सुलेमान इब्ने यसार ये मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े आलिम थे, मदीना के फुकहाए सबा यानी सात वो शख्सियतें जो मसाइल की महिल मदीना मुनव्वरा में समझी जाती थी हजरत सहाबा के जमाने में ताबीन में से, उनमें से ये थे हजरत सुलेमान इब्ने यसार, बड़े हसीनो जमील थे। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा वो अपने एक साथी के साथ वो उमरे के लिए जा रहे थे, रास्ते में मकाम अबवा पर ये दोनों ठहरे, खेमा लगाया और जहां इन्होंने खेमा लगाया ठहरने के लिए वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी टीला नुमा और उसके ऊपर एक तंबू था जिसमें बद्दू अपनी बीवी के साथ रहता था, उसकी बीवी बड़ी हसीनो जमील थी। ये अपने खेमे में ये तो थोड़ी देर के लिए यहां रुके थे, ये अपने खेमे में ये और साथी खाने का जब वक्त आया तो साथी थैला लेकर बाजार गया ताकि कुछ खाने की चीजें खरीद करके लावे। उस बद्दू की बीवी देर से इनको देख रही थी और ये बड़े हसीन और जमील थे, इनके हुस्न और जमाल की वजह से वो इनको देखकर उन पर फरेश्ता और आशिक हो गई थी और इस बात के इंतजार में थी कोई मौका मिले तो मैं इनके पास पहुंचूं। और उसने देखा कि इनका साथी तो थैला लेकर कहीं बाहर गया, तो मौका देखकर वो उस पहाड़ी पर से उतरी, खेमे में आई और आकर के अपना निकाब खोल दिया। इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है कि ऐसी हसीन और जमील थी जैसे चांद का टुकड़ा हो, अपनी दस्ताने भी ये कर दिए और उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ये यूं समझे कि ये कोई जरूरत के वास्ते आई है खाने पीने की, तो ढूंढने लगे खाने की कोई चीज हो तो मैं इसको दूं। वो कहने लगे मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं है, मुझे तो वो जरूरत है जो एक औरत को मर्द सिवा करती है। ये सुनकर हजरत सुलेमान ने एहसास, वो तो बहुत बड़े आलिम थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, ये सुनते ही जोर जोर से उन्होंने रोना शुरू किया, अपना मुंह अपने पांव जो है उठा नीचे कर लिए और घुटनों के ऊपर अपनी थोड़ी रखकर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। इतना चिल्ला कर रोना शुरू किया कि वो जो बदवी औरत थी उसको डर लगा कि लोगों तक आवाज पहुंचेगी, लोग आ जाएंगे तो मेरी रुसवाई हो जाएगी, तो वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भाग गई। अब ये रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उनका साथी जो बाजार गया था वो आया, देखा कि ये रो रहे हैं तो पूछा क्या बात है। इन्होंने मामले को छुपाने के लिए यूं कहा कि बाल बच्चे याद आ गए। क्या बाल बच्चे याद आने पर आदमी ऐसा तो नहीं रोता जो तुम रो, तुम्हारी तो आंखें भी लाल चेहरा भी फूल गया है, कोई ऐसी याद पर इतना ज्यादा रोया नहीं जाता, कोई बात है सच सच बताओ। तो बहरहाल उन्होंने फिर वाकया सुनाया, तो जो वाकया सुनाया तो उसको सुनकर उनका साथी भी रोने लगा। ये पूछते तुम काहे को रोते हो, वो कहता है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं नहीं था, मुझे तो डर ये हुआ कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता खुदा न खास्ता तो मैं तो इस मुसीबत में गिरफ्तार ही हो जाता, अल्लाह ने मेरी भी हिफाजत फरमाई और तुम्हारी। देखो सोच, ये सोच देखो उस जमाने की नेकी की सोच एक आज की सोच है, है? मैं कहा करता हूं इस वाक्य को बयान करते वक्त कि आज का पिघला हुआ नौजवान ये वाक्य सुनेगा तो क्या कहेगा, यार तू तो बड़ा लकी था, तूने मौका छोड़ दिया, चांस छोड़ा, वो कहता नहीं यार ये क्या कहते हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं था, अल्लाह ने मेरी भी हिफाजत की तुम्हारी। खैर अब ये दोनों मक्का मुकर्रमा पहुंचे, उम्र से फारिग होने के बाद हजरत अस्वद के सामने ये हजरत सुलेमान इब्न यसार अपनी चादर में लिपटे हुए बैठे हैं और थके हुए होने की वजह से बैठे बैठे ही उनकी आंख लग गई। आंख लगी हुई हालत में उन्होंने ख्वाब में देखा एक हसीन नौजवान बहुत खूबसूरत, उनको देखकर ये ख्वाब में पूछते हैं आप कौन है, तो ख्वाब में जो शख्सियत नजर आई थी उन्होंने जवाब में कहा मैं यूसुफ हूं। कहा यूसुफ ने सिद्दीक, यानी हजरत यूसुफ जो अल्लाह के काम है वही है। तो ये हजरत सुलेमान इब्न यसार ख्वाब में उनको कहते हैं ज़लीखा के साथ आपका किस्सा अजीब है। तो ये सुनकर हजरत यूसुफ जवाब में इनको कहते हैं वो अगवा वाली औरत के साथ तुम्हारा किस्सा उससे भी अजीब है। ये देखो ये अल्लाह ताला के यहां कैसी इनका अपने आप को इस गुनाह से बचा लेना, ये अल्लाह को कितना पसंद आया कि एक नबी के जरिए से ख्वाब में इनको बशारत दी जा रही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न असद याफई एक बड़े आलिम है, उनकी किताब अत-तरहीब अत-तरहीब तसव्वुफ में एक अत-तरहीब अत-तरहीब अल्लामा मुंज़िरी की है हदीस के अंदर जो मशहूर है वो अलग, ये दूसरी है। उन्होंने एक वाकया लिखा है एक नौजवान था उसके जिस्म और उसके कपड़ों में से हमेशा मुश्क और अंबर की खुशबू आती थी, जब भी देखो अंदर से मुश्क महक रहा है, अंबर महक रहा है। किसी ने उस औजान से कहा, यार तुम ये खुशबू के लिए कितना खर्च करते हो, जब देखो तुम्हारे कपड़ों में से खुशबू आती है, जिस्मों में से मालूम होता है तुम बहुत पैसे खर्च करते हो, काय के लिए, इस खुशबू के वास्ते। उसने कहा, अल्लाह की कसम मैंने एक पाई भी नहीं खर्च की। कहा, ये खुशबू काय की? तो कहा, इसका एक राज है, क्या बताओ हमको। बहुत इसरार किया तो उसने कहा कि मेरे बाप की घरेलू सामान की एक दुकान थी और मैं भी वहां बैठता था बाप के साथ। एक मरतबा एक बूढ़ी और सामान खरीदने के लिए आई, बहुत सारा सामान खरीदा और जब उसको दिया तो वो कहने लगी मेरे अब्बा से कि इस सामान की कीमत लेने के लिए तुम्हारे बेटे को मेरे साथ घर भेजो। तो कहा, मेरे अब्बा ने कहा चले जाओ, ले आओ पैसे वहां से। कहा, मैं उस औरत के साथ गया, एक बहुत बड़ा मकान महल नुमा हवेली नुमा था, वो औरत मुझे उसके अंदर ले गई और उसमें कमरा बड़ा मुजयन बड़ा खूबसूरत, उसमें जब ले गई देखा एक बड़ा तख्त है और उस पर एक हसीन और जमील बड़ी नौजवान औरत बहुत उम्दा लिबास के अंदर बैठी हुई। उसने मुझे देखते ही मुझे अपने करीब इशारा किया, मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी। कहा, मैं तो ये मंजर अचानक देखकर घबरा गया कि ये क्या मुसीबत, अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं इससे। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये डाला, मैंने कहा मुझे कजाए हाजत की जरूरत है, पखाने। अब उस जमाने में ऐसे फलश सिस्टम के तो थे नहीं पखाने, बल्कि वो जो पुराने जिन्होंने देखे होंगे, जिन्हें ये गला जो ऊपर रहती अलग से, ऐसे थे। तो कहा, मैंने जब उसके सामने यूं कहा कि मुझे कजाए हाजत की जरूरत है, तो उसने अपनी खादिमाओं से कहा है वो बैतुल खला साफ कर दो। कहा, जाओ करके अपनी जरूरत पूरी करके आओ। कहा, मैं अंदर गया, अंदर जाकर के मैंने पखाना किया और फिर अपना ही पखाना लेकर अपने कपड़ों पर अपने चेहरे पर लगा दिया और बाहर जब निकला तो ये मंजर देख कर वो औरत के नजरी है, पागल को कौन भगाओ, इसको भगाओ, इनका मकसद तो अपने आप को इस मुसीबत से निजात दिलाना था। इसलिए वो फौरन वो उसकी खादिमाओं ने उसको धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दिया। ये कहते हैं, मेरे पास एक दिरहम था, मैंने उसका साबुन खरीदा और नहर पर गया, नहर पर जाकर के खूब नहाया, अपना बदन भी साफ किया, कपड़े भी अच्छी तरह धोए सुखाए पहने। रात को जब सोया तो ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक तआला ने एक फरिश्ते को आदमी की शक्ल में मेरे पास भेजा और वो आकर मुझे कहता है कि तुमने आज अपने आप को उस गुनाह से बचाया, जिस तरह बचाया अल्लाह ताला ने खुश होकर तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। और साथ में वो फरिश्ता खुशबू लेकर आया था, उसने वो खुशबू मेरे चेहरे पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे बदन पर लगाई। वो दिन और आज का दिन हमेशा मेरे कपड़ों और जिस्म में से अंबर और मुश्क की खुशबू आती है। ये हुआ उसका यह असर था। अल्लाह ताला के यहाँ उसके इस अमल की कितनी बड़ी कदर और कीमत, दुनिया में भी अल्लाह ताला ने उसको एक करामत अता फरमाई। एक और वाकया अंदर इन्होंने मौलाना अब्दुल्ला ने असद याफी ने लिखा है अपनी इसी किताब में। एक नौजवान था, वो भी जो है बहुत गुनाह में मुलव्वस रहता था और उसकी आदत थी जो भी कोई गुनाह करता वो उसके पास एक कापी थी उसमें लिख लिया करता था, आज मैंने ये किया आज मैंने ये किया। उसकी माँ जो थी वो उसको रोकती भी थी, उसको ये फिक्र था कि मेरा बेटा किस बुराई में फंसा हुआ है। एक मरतबा वो अपने घर से निकला तो एक औरत जिसके बच्चे फाका में मुब्तला थे भूख में, वो अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकली। उसके पास, उस औरत के पास अपने जाती कपड़े भी उमदा नहीं थे, तो अपनी पड़ोसन से अच्छे कपड़े लिए पहने और बाहर आई। उस औरत को इसने देखा तो अपने करीब बुलाया और गुनाह करके अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मुझे वो औरत ये सुनकर रोने लगी, कहा मैं तो मुसीबत ज़दा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, तूने जब मुझे बुलाया तो मैं तो यूं समझी कि तू मेरी मदद करेगा, तू तो उसके बजाय मेरे साथ ऐसी बातें करता है। उसकी भी तोबा का वक्त आया था तो उसने जो है उसको एक रकम दी और उसको नदामत हुई और अपनी उसी नदामत के साथ आइंदा के लिए अपनी हरकतों से तोबा करके घर आया और घर आकर के अपनी वालिदा को यह किस्सा सुनाया। तो उसकी वालिदा ने कहा कि तू अपनी सारी हरकतें वो कापी में लिखता है ना, इसको ये लिख ले। उसने कहा कापी में अब जगह नहीं है, सारी कापी भर गई है। तो कहा हर्ष्य में लिख ले, तो आस पास का जो खाली हिस्सा होता है। तो वालिदा के इसरार पर उसने लिखा और फिर सुबह को जब उठा तो देखा कि पूरी कापी जिसमें उस गुनाहों का तज़किरा था वो बिल्कुल कोरी है और ये वाकया जहाँ लिखा था वहां कुरान पाक की आयत है इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिल-ज़ाकिरीन, यानी नेकी के काम गुनाहों को ले जाते हैं। ये गोया अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत की अलामत थी। तो मैं तो यह अर्ज़ करना चाहता था इफ़्फ़त और पाक दामनी के तकाज़ों को पूरा करने वालों के साथ अल्लाह ताला की तरफ से एहसान और इकराम का जो मामला होता है और कयामत में जन्नत में अल्लाह ताला उनको जो नवाजेंगे वो तो वहीं जाकर के पता चलेगा। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी ताकीद फरमाते हैं इसकी। और जिना जो है बेहयाई के काम, कुरान कहता है ला तक़रबू ज़िना इन्नहू काना फ़ाहिशतन व सा सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ, ये बड़ा बेहयाई का काम है और बड़ा बुरा रास्ता है। जिना के जितने भी असबाब हो सकते हैं शरीयत की एक गोया इस्लाम का एक खास अंदाज ये भी है कि किसी काम की जब मुमानात करता है, किसी काम से रोकता है, किसी काम को हराम करार देता है तो उस काम तक पहुंचाने वाले जितने भी असबाब हैं उन पर भी क्या लग जाती है, पाबंदी लग जाती है। जैसे शराब को हराम करार दिया, शराब पीना हराम करार दिया तो शराब को बनाना भी हराम, शराब को बेचना भी हराम, किसी के सामने शराब पेश करना भी हराम, शराब को खरीदना भी हराम, किसी के लिए शराब उठा करके ले जाना भी हराम। बोला एक शराब क्या हराम हुई, बहुत उस शराब के पीने की जितनी भी मददगार शक्लें थी सब पर पाबंद, तभी तो आदमी बच सकता है ना शराब से। एक तरफ तो ये कहा जाए कि शराब पीना हराम और दूसरी तरफ शराब को बेचने को खरीदने को बनाने को उसकी इजाजत दी जाए, ये तो दुनिया में चलने वाली बात नहीं। पर वो फारसी का शायर कहा करता है कि दरमिया ने तारे दरिया तख्ता बंदम कर गई, कि मुझे जो है एक तख्ते के साथ बांध करके समुन्द्र में डाल दिया और फिर बाद हुई गुली के दामन तर लोगों होशियार बाज, और फिर मुझे आप ये टिमटम दे रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि देखना कपड़े भीगने न पाए। एक तरफ तो मुझे बांध करके दरिया में डाला और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कपड़े भीगने भीगने की नौबत, याद क्या हो रहा है। याद हमारे दिल के अंदर वाकयात होते हैं और लड़कियों के साथ जीना में जबर के जो वाकयात होते हैं अखबार में आप पढ़ते हैं, कोई अल्लाह का बंदा इन्हीं में का जब ये कहता है कि भाई ये लड़कियां इस तरह जो है बेहयाई के लिबास में आती है तो जाहिर है इस तरह आकर वो मर्दों को दावत देती है अपने अमल से, उसके नतीजे में अगर इस तरह के वाकयात पेश आए तो फिर ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप इस जुमा को और इस जो है बहुत काल को गुनाह करार दे रहे हैं, तो उसके लिए जो चीजें आदमी को बढ़ सकती है उन पर भी क्या लगनी चाहिए, पागल नहीं लगनी चाहिए। हुकूमत का दस्तूर होता है, जैसे मलेरिया नामूदी आप क्या ये सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसने एक बड़ा अभियान चलाया, एक तहरीर चलाई कि मलेरिया को नामूद करो, तो मलेरिया को नामूद करेगा कि जब तहरीर चलाई जाएगी तो इतना ही नहीं कि खाली जिनको मलेरिया का बुखार आया है उनको टैबलेट और इंजेक्शन देकर बुखार को दूर करने की कोशिश की जाएगी, नहीं, बल्कि वो मलेरिया जहां से आता है बड़े बड़े साइन बोर्ड आप देखेंगे चौराहों पर लगे हुए जिन पर मच्छरों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई है, ये है वो मच्छर जो तुम्हारे घर के कोने में अंधेरे कोने में और जहाँ पानी मैला जमा होता है वहाँ ये पैदा होते हैं, और यही मच्छर जब तुमको काटेंगे तो उससे क्या होता है, मलेरिया होता है, उसी से फाइलेरिया भी होता है, ये भीड़ पकड़ेगा आजकल तहरीर चल रही है तो सारे मच्छरों की पहचान करवाते हैं, बुरे कहते ये एक तहरीक, तो वहाँ उस बीमारी के पैदा होने की नौबत ही ना दूर दूर तक के जो असमान है उनको क्या किया जाता है, खत्म किया जाता। इस्लाम ने जब जीना को हराम करा दिया तो इतना ही नहीं कि जीना को हराम करा दिया, अजनबी औरत के देखने को भी क्या करा दिया, हराम करा दिया। आज तक जिना होता है, नबी करीम सलाम फरमाते हैं कि आंखें जिना करती है और आंख का जिना क्या है, अजनबी और पराई औरत को देखना। इस्लाम ने जो है औरतों के मामले में भी तकसीम की, कुछ औरतें तो वो हैं जिनको जिनके साथ निकाह हराम करा दिया गया, उनको महरूम उनके उनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं, जैसे माँ है बेटी है पोती है बहन है पति की है भांजी है ये सब, और कुछ दूसरी औरतें वो है जिनके साथ निकाह हलाल है वो नामहरम हो, जिनके साथ निकाह हलाल है ऐसी नामहरम औरत को देखना, उसके साथ बात करना, देखना आंख का गुना, बात करना जबान का गुना, ये मोबाइल के जरिए से जो बातें करते हैं नौजवान आपस में इस तरह की, ये जबान का गुना और उन ऐसी बातों को सुनना ये कान का जिना, और जो है ना ऐसी बातों को लिखना या ऐसी बातों को करने के लिए मोबाइल के स्विच को इस्तेमाल करना ये हाथ का जिना, चल करके जाना ये तो सब गुना। अजनबी औरतों के साथ मेलजोल बेपर्दा उनके साथ हलक पर उसकी भी शरीयत नहीं जाती, ये सब कोई चीजें हैं जो पहुंचाती है कहां तक, जिना तक। शरीयत ने जिना को हराम करा दिया तो इन सारी चीजों को भी क्या करा दिया, हराम करा दिया है। नहीं ये वो भी नहीं ये भी नहीं, उसको तो हराम करा दे इसकी इजाजत दे तो फिर बात वही हो जाएगी, फिर पहाड़ पांव बांध कर समंदर में डाल के कहा जाए ये देखना कपड़े भिंडे न पावे, ये शरीयत ऐसा हुक्म दिया करती नहीं है। तो हकीकत में तो यह है कि जिना के असबाब को शरीयत ने हराम करा दिया, और जिना का सबसे पहला सबब था निगाह। आदमी जब अजनबी औरत को देखता है ना तो ये देखने के नतीजे में उसके कल्ब में उसके दिल में उस औरत की तरफ एक मैलान पैदा होता है, दिल में एक ख्वाहिश पैदा होता है। देखो ये देखना आंख जो है ना आंख यू समझिए कि वो एक कैमरा है, और जो चीज भी उसके सामने आती है वो इस कैमरे के जरिए से वो सारी तस्वीरें अंदर जाती कहा दिल और दिमाग की मेमोरी में जमा होती है, और हर मंजर का एक अलग अलग असर होता है। देखो हर एक मंजर का एक असर नहीं होता, आप किसी जालिम को देखे कि किसी बिचारे मजलूम को एक कमजोर बच्चे को एक आदमी जो है डंडा लेके एक जो है पिटाई कर रहा है, आप ये मंजर देखेंगे तो आपकी आंखों के जरिए से मंजर जब आपके दिलो दिमाग तक पहुंचेगा तो आपकी तबीयत पर तो इसका क्या असर होगा, आपकी तबीयत पर यह असर होगा कि मानने वाले के मुताबिक आपके दिल में एक नफरत का जज्बा पैदा होगा, ये तालीम क्या कर रहा है, और जिसको माना जा रहा है उसके मुताबिक आपके दिल में क्या पैदा होगा, एक रहमत का मेहरबानी का जज्बा पैदा होगा। किसी बीमार को देखेंगे इसकी हालत बिल्कुल गैर है, तो ये सीन जब आपकी आंखों के जरिए से दिलो दिमाग में पहुंचेगा तो इस सीन के जरिए से आपके दिल पर क्या कैफियत तारी होगी, उस बीमार के साथ आपको एक हमदर्दी पैदा होगी। आप अपने खानदान के बड़ों को देखेंगे, अपने बाप को देखेंगे, अपने उस्ताद को देखेंगे, तो उनको देखकर उन आपके दिल में उनकी अजमत और मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। बुरा आपसे जो सीन और जो मनाजिर हमको नजर आ रहे हैं, हर मंजर का एक असर दिल पर है। इसी तरह जब अजनबी औरत को आदमी देखेगा तो उसकी वजह से दिल में क्या पैदा होती है, शहवत पैदा, शहवत, और आदमी का नफ्स उसको बुराई करने के लिए आमादा करता है। तो शरीयत भी कहती है देखो मत। अब कोई कहे बाप को माँ को देखने की तो इजाजत दे दी, नहीं अजनबी औरत को देखने की इजाजत क्यों नहीं दी, इसीलिए दी, नहीं दी कि माँ को देखोगे तो वो जज्बा नहीं पैदा होगा, माँ को देखोगे तो मोहब्बत और खिदमत का जज्बा पैदा होगा, लेकिन अजनबी औरत को देखोगे तो वो शहवत पैदा होगी। जैसे किसी को एटेक आया हो ना एटेक, और उसको आईसीयू में रखा गया हो, तो जब लोग मुलाकात के लिए जाते हैं तो डॉक्टर मुलाकात के लिए जाने वालों को बहुत सख्त वार्निंग देते हैं कि देखो भगवान के सामने जरा एहतियात से रहना, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके मुताबिक ये डर हो कि वहां जाकर वो क्या हो जाएगा, बेकाबू हो जाएगा, रोना शुरू करेगा, तो उसको तो डॉक्टर जाने की इजाजत ही नहीं, इसको मत जाने देना, वरना वो उसके सामने जाकर रोएगा तो फिर अटैक आ सकता है। तो देखो ना क्यों मना किया, वो इसी तो शरीयत जो है हर चीज देखने, जिन चीजों की शरीयत ने देखने की इजाजत दी और बादशाह का हुक्म दिया उस पर सवाब का वादा। हदीस में आता है जब शौहर अपने घर में दाखिल होता है और अपनी बीवी को मोहब्बत की नजर से देखता है और उसकी बीवी अपने शौहर को मोहब्बत की नजर से देखती है तो अल्लाह ताला उन दोनों को रहमत की नजर से देखो ये देखना चाहिए उसकी ताकत क्यों, देखो आपकी बीवी है, आपको उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, यहाँ तो मोहब्बत होनी ही चाहिए, आपको चाहिए कि उसके साथ मोहब्बत का मामला करें। इसी तरह हदीस में आता है कि कोई माँ बाप का मुतीउ फरमाबरदार बेटा, तो माँ बाप की हालत का खिदमत गुजार, जिसकी जात से माँ बाप को क्या पहुँचती है, राहत पहुँचती है, जब वो माँ बाप को नजर रहमत से देखता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर सवाब देते हैं एक हज्जे मजरूर का, मान मलद बार यंजो इलाय अबवय नजर रहमत इला कतब अल्लाह बिकुल नजर हज्जत मजरूर, हज्ज मबरूर का सवाब। ये सुनकर सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कोई ऐसा बेटा अपने माँ बाप को दिन में 100 मरतबा इस तरह नजर रहमत से देखे तो क्या 100 हज्ज मबरूर का सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की जात तो बहुत बड़ी है, उसके खजाने में कहां कमी है, बुखला तो हमारे पास है, वहां तो कुछ कमी है ही नहीं, 100 मरतबा देखा तो 100 हज्ज मबरूर का सवाब। तो जहां इन आंखों को इस्तेमाल करना है करो, वहां तो करते नहीं होते, गुजराती में कहां से पालकू गरीब बजाने आलू डाले, दूसरों की औरतों को देखते हैं, जिसको अपनी बीवी को नजर रहमत से देखना है वहां नहीं देखते, उल्टा चला। हालांकि शरीयत ये चाहती है कि जितना मियां बीवी के अंदर आपस में मोहब्बत हो, ऐसे तमाम असबाब जो इन मियां बीवी की मोहब्बत में कमी पैदा कर सकते थे उन तमाम असबाब को शरीयत ने खत्म किया ताकि जितनी मोहब्बत होगी उतनी ज्यादा उनके अंदर पाक दामनी होगी। एक आदमी के अंदर जितनी उसकी बीवी की मोहब्बत होगी उतना वो अजनबी औरतों से अपने आप को बचाएगा। जाहिर यही चीज इफ्फत का जरिया बनती है, पाक दामनी का जरिया बनती है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये पाक दामनी को खत्म करने के जो असबाब में पहला सबक बदनिगाही या अजनबी औरतों को देखना उसके मना किया। कुरान कहता है नबी आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत। मालूम हुआ शर्मगाह की हिफाजत मौकों से कई पर निगाह की हिफाजत। अल्लामा कय्यिम ने लिखा है कि पहले आंख बहकती है, उसका असर दिल में आता है, जिसके नतीजे में दिल में वसवसे पैदा होते हैं और उसके बाद पांव उठते हैं और फिर शर्मगाह का मामला आता है। ये चार मरहले हैं। पहला मरहला, पहला स्टेज कौन सा है? आंख का। वहीं से इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, उसी को बंद करो ताकि आगे जाने की नौबत ही ना हो, जड़ ही को बंद करो। फिर दुनिया का साधन नबी आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीचा रखे और जब निगाहें नीचे रखेंगे तो शर्मगाह की भी क्या होगी। और आगे दूसरी आयत में औरतों को भी यही हुक्म दिया। ये भी कुरान का अजीब मामला। कुरान में जितने भी अहकाम दिए गए आम तौर पर या ईमान वाले कहकर मर्दों औरतों दोनों को वह एक साथ हुक्म दिया गया, लेकिन ये हुक्म निगाह की हिफाजत का मर्दों को अलग और औरतों को अलग, इससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता। नबी करीम साधु फरमाते हैं हदीस-ए-कुदसी आने हुजूर सलातम अल्लाह ताला का इरशाद नकल करें, अल्लाह का कौल, हुजूर अल्लाह का कौल नकल करते हैं। अन्नजर तो सामुम मस्मूम इन सेवा में इंग्लिश निगाही शैतान के तीरों में से जहरीला तीर। देखो पहले जमाने में ये पिस्तौल ने, ये राइफल ने, ये बंदूक ने, ये कुछ नहीं था, तीर थे और बाले थे, नेजे जिसको कहते हैं, और तलवार, ये तीन चीजें थी। तो दूर का जो दुश्मन हो उसको मारने के लिए तो यही एक शक्ल थी। कौन सी? तीर थी, वरना तो तलवार भी खरीद में और बाला दो चार कदम मजीद, बाकी और उड़ने वाले पर तो बाले से भी काम नहीं चल सकता। तो पहले जमाने में किसी को मारने के लिए तीर चलाया जाता था। तो वो लोग अब तीर का हाल यह है कि अगर वो बीच में लगा, छाती में लगा, बराबर लगा तो खत्म करेगा, और जरा सा यहाँ कंधे से एक आध खराश मार के आगे निकल गया तो कुछ भी नहीं, वो आदमी बच जाएगा। तो वो लोग तीर को जानलेवा और मोहलिक बनाने के लिए कुछ दिनों तक तीर के ऊपर का जो लोहा होता है उसको जहर में डुबोए रखते थे। ऐसे तीर को इनके यहाँ कहा जाता था जहरीला तीर। अब वो जब चलाया तो चाहे बीच में लगाओ, यहाँ जरा सा खराश और खुतरा सा छील कर आगे निकल गया तो भी ये खराश जहर की वजह से आदमी को क्या कर देती थी? खत्म कर देती थी। तो अल्लाह तआला फरमाते हैं ये निगाही जो है वो शैतान का जहरीला तीर है, जिससे कोई बच सकता नहीं, वो हलाक करके रहता है। आगे बिलाता फरमाते हैं मन तरा कहा मखावती अब्दलतु ईमान यजे वो हलावत हो फी कल्बी। जो आदमी इस बदनिगाही को मेरे डर की वजह से छोड़े, आदमी ये सोचे अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह का खौफ दिल में लाकर अपने आप को इस बदनिगाही से बचा। और एक बात याद रखिए, बदनिगाही से बचाने वाली चीज अल्लाह के खौफ के अलावा कोई और चीज हो भी नहीं सकती। बदनिगाही ऐसा अजीब और गरीब गुनाह है कि इतना बड़ा मजमा है ना, इस बड़े मजमे में भी कोई आदमी किसी अजनबी औरत को अगर बदनिगाही से देखना चाहे तो इस तरह देख सकता है कि सारे मजमे को चकमा दे दे और देख ले, खांसा मार ले बंगल वालों की भाषा में बोले तो समझा करें ये बदनिगाही। लेकिन आप इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को दे सकते हैं। कुरान कहता है ये अल्लाह ताला आंखों की खिलानत को, ये आंखें अजनबी औरतों को जो देख रही है अल्लाह जानता है। वैसे अल्लाह ताला देख रहा है, किसी को पता न चले लेकिन अल्लाह ताला को पता चल जाता है। और जब अल्लाह एक मोमिन अगर ये सोचे कि मेरी इस हरकत का पता किसको है, अल्लाह को है, तो फिर उसको तो अपने आप को इन चीजों से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। आज हाल क्या है, आप कोई गलत काम करना चाहते हैं और उस गलत काम को करते वक्त आप देख रहे हैं कि आपके अब्बा बैठे हुए हैं और आपको वो गलत काम करता हुआ देख सकते हैं, तो आप वहां वो काम करेंगे नहीं। आपके उस्ताद बैठे हुए हैं तो आप वो गलत काम करेंगे नहीं। आपके पीर बैठे हुए हैं तो आप वो गलत काम करेंगे नहीं। ये तो बड़ों की बात थी। आपका शागिर्द बैठा हुआ है और कोई अजनबी औरत जा रही है तो क्या आप ताक कर उसको नहीं देखेंगे? आप कहेंगे ये मेरा शागिर्द, कहेगा ये मेरा उस्ताद कैसा बापू है, है? वो उस शागिर्द के डर से आप नहीं देखेंगे। तो नहीं कहेंगे आपका बेटा बैठा हुआ है, हालांकि ये तो छोटा है, शागिर्द बाप और उस्ताद और पीर तो बड़े थे और शागिर्द और जो है बेटा और मेरी छोटे हैं, उनके देखते हुए भी आप ये गलत काम नहीं करेंगे। एक बुजुर्ग ने अपना मुकाशफा बयान किया कि अल्लाह ताला ने उनके दिल पर ये बात डाली कि बंदे जब तू गुनाह का इरादा करता है तो वो तमाम सुराख बंद कर देता है जहां से तुम्हें कोई देख सकता है। या नहीं, आदमी जब गुनाह के काम का इरादा करता है तो सेफ्टी के लिए पहले से खिड़कियां बंद करेगा, ये करेगा, वो करेगा। किसी एक छोटा बच्चा भी अगर देख सकता हो तो वो भी बंद करने की कोशिश। तो तुम छोटे बच्चे से भी शर्म करते हो लेकिन मुझसे शर्म नहीं करते, अल्लाह ताला फरमाता अल्लाह ताला तो देखता। इसलिए ये बदनिगाही जो है कुरान बारी ताला फरमाते जो मेरे डर से उसको छोड़ेगा मैं उसके दिल में ऐसी ईमान की मिठास दूं, ऐसा ईमान अता करूंगा जिसकी मिठास को वो महसूस करेगा। तो जो लोग अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं अल्लाह ताला उनको ईमान की मिठास से क्या करते हैं, नवाजते हैं। और आदमी को देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के मुख्तलिफ अंदाज थे। इस जिना से रोकने के लिए दूसरा अंदाज भी आपने इख्तियार किया, साइकोलॉजिकल नफ्सियात। एक नौजवान आया और नब आकर उसने दरखास्त की कि अल्लाह के रसूल मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। आप बताओ मेरे और आपके सामने आकर कोई नौजवान ऐसी बात कहे तो हमको गुस्से होकर टमाटर जोड़ देंगे उसको, कुर्बान जाइए नबी करीम से। आपने कुछ ना बिठाया, उसके पास बिठाया, बिठा करके उसको कहा तो तुम बताओ कोई आदमी अगर तुम्हारी बहन के साथ जीना करे तो ये तुमको गवारा है, तुम इसको पसंद कर सकते हो? कहा नहीं। कोई आदमी तुम्हारी माँ के साथ जीना करे तो तुम उसको गवारा कर सकते हो? कहा नहीं। कोई आदमी तुम्हारी खाला के साथ ये हरकत करे तो तुम उसको गवारा कर सकते हो? कहा नहीं। कोई आदमी तुम्हारी फूफी के साथ ये मामला करे तो तुम उसको बर्दाश्त कर सकते हो? कहा नहीं। हुजूर साहब ने फरमाया तुम भी जिससे जिना करोगे वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की खाला है, किसी की बुबी है, क्या वो उसको गवारा करेगा? जब तुम अपने लिए इसको गवारा नहीं करते तो वो कैसे गवारा करे? देखिए आप सलासन ने कैसे अजीब और गरीब अंदाज से उसका जहन बनाया, उसके बाद उसके दिल में मिठाई चांद के सुनने के बाद فوراً اس کو اپنی کیفیت پر ندامت ہوئی اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ اس کے دل میں سے غم و غش میل کچرے کو نکال دے. اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کا حال یہ تھا کہ جب جاتا تھا تو اس کی نگاہ نیچے سے کبھی اوپر اٹھتی نہیں تھی. یہ بھی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں جو بری حرکت جہاں کرنے جا رہا ہوں کیا آپ زنا کریں گے؟ تو زنا کیا ہے؟ دیکھو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افو طیب نساؤکم وبرو آباؤکم تبرو ابناؤکم. تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی پاک دامن رہے اس کو چاہیے کہ خود پاک دامن رہنے کا کیا کرے؟ اہتمام کرے. قدرت کا ایک نظام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عشق لا تزنوا فتزنوا لذت نسائکم. زنا مت کرنا ورنہ تمہاری عورتوں کی لذت ختم ہو جائے. مطلب یہ کہ ایک آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے نتیجے میں جو ایک مسرت اور جو لذت ہوتی ہے زنا کی عادت کی وجہ سے یہ لذت اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. جو آدمی زناکار ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کے نتیجے میں جو لذت ملنی چاہیے نہیں ملتی. تو اللہ تزنوا فتزنوا لذت نسائکم وعفوا طیب نسائکم. تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی. پھر آگے فرمایا زنا مرو فلانی فزنت نسائکم. فلانے قبیلے کے لوگ زنا میں مبتلا ہوئے تو ان کی عورتیں بھی کیا ہو گئی؟ زنا میں مبتلا ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب شعر ہے. فرماتے ہیں افو طیب نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یلیق بمسلم. تم پاک دامن رہو تو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی اور حرام کام سے بچے گی. ایسی حرکت جو ایک مسلمان کے لیے شایان شان نہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں ان زنا دین فإن اقرضته کان الوفا من اہل بیتک فاعلم. امام شافعی فرماتے ہیں اسی حدیث سے یہ مضمون ہے زنا ایک قرضہ ہے. زنا ایک قرضہ ہے جو تم لے رہے ہو. تم نے اگر زنا کا ارتکاب کیا تو کیا ہوگا آگے؟ تمہارے گھر کے کسی فرد کے ذریعے سے اس کا بدلہ چکانا پڑے گا. جو یعنی جیسے میں آدمی قرضہ لیتا ہے نا تو قرضہ ادا کرنا پڑتا ہے. آپ نے اگر زنا کا ارتکاب کیا تو لامحالہ آپ کے تعلق سے رکھنے والی کسی بھی عورت چاہے وہ آپ کی ماں ہو بیٹی ہو بہن ہو بیوی ہو یا کوئی اور عزیزہ ہو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ضرور کیا جائے. یہ قرضہ ہے قدرت اس کو چھوڑتی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں من یزن یزن بہ ولو بجدار. جو آدمی زنا کرے گا اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا چاہے اس کی دیوار کے ساتھ کیوں نہ. اور ان کنت یا ھذا نبی بن فقمی اے مخاطب تم اگر سمجھدار ہو تو میری اس بات کو سمجھ جاؤ. حقیقت تو یہ ہے جو لوگ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں یہ مصیبت ان کے گھروں میں آتی ہے. ان کی بیویاں پاک دامن نہیں رہ سکتی. تو شریعت چاہتی ہے اور ویسے بھی زنا کی وجہ سے آدمی کی غیرت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. آج دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بہت سے ایسے واقعات سنے ہیں. دو دوست ہیں یہ اس کی بہن کے ساتھ وہ اس کی بہن کے ساتھ لگا ہوا ہے. معشقہ ہے دونوں جا رہے ہو کر گیا. وہ جو ایک اپنی بہن کے معاملے میں غیرت ہونی چاہیے. شریعت غیرت کو چاہتی ہے. ایک آدمی کی ایسی عورتیں جن کے ساتھ اس کی وہ حرمت کی رشتہ داری ہے اس کی ماں ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بہن ہے उसकी फूफी ये खाला है, अगर कि इस औरत के साथ कोई दूसरा आदमी अगर कोई बुरा काम करेगा तो आदमी की गैरत उसको बर्दाश्त करती नहीं, मांगनी जोश में आता है, ऐसा करने वाले के साथ क्या है बिर जाता है, बात तो मारे गैरत के कत्ल तक करवाते हैं। इसी ये गैरत मतलूब है शरीयत की निगाह में, जो आदमी अपने घर की औरतों के साथ होने वाली इस हरकत पर जोश में ना आवे उसको शरीयत दयूस कहती है। और हदीस में आता है कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो हकीकत तो यह है कि ये हरकतें जो है आग दामनी को छोड़कर जीना आज क्या हो गया। आज जब हम सुनते हैं तो दिमाग नहीं काम करता, ये कैसी तहजीब कि दोस्त तो जा रहे हैं और अपनी बीवियों की तब्दीलियां कर रहे हैं, ये कोई बदलने की चीजें हैं। वहां जाकर के ये उसकी बीवी से नऊज़ुबिल्लाह मुलव्वस हो उसकी बीवी से, और ये एक मरतबा थोड़ा होता, एक मरतबा जब ये हो गया तो रास्ता इंडा के लिए खुल गया। शरीयत के जो मकासिद हैं अल्लाह ताला ने ये शरीयत जो नाजिल फरमाई उन मकासिद में से एक बड़ा मकसद जो है नसब की हिफाजत, नसब की हिफाजत। कोई ऐसी शक्ल जिसमें एक का नसब दूसरे के साथ खलत मलत हो जाए शरीयत उसको इजाजत देती। इसीलिए एक आदमी ने अगर तलाक दी तो जब तक तो औरत इद्दत न गुजारे वहां तक दूसरा निकाह इद्दत तू बदलवाए, अगर हमल है तो ठहर जाओ बच्चा पैदा हो जाने दो ताकि पता चले कि ये बच्चा उसका है किसका तलाक देने वाले का। अब जब ठीक पाक साफ हो गई अब दूसरा निकाह कर सकता, अब दूसरा करेगा तो अब आइंदा पैदा होने वाला उसका हो। तो नसब की हिफाजत ये शरीयत के अजीम मकासिद में से है। आज की बेगैरत और दयूसाना तहजीब ने इन मकासिद को भी खत्म कर दिया और लोगों के दिलो दिमाग से गैरतें खत्म हो गई, हरकतें गैरों की और जो है अल्लाह की मखज़ूम और दाल। हम रोजाना कुरान नमाज की हर रकात में दुआ करते हैं अहदिना सिरात मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता दिखला, कौन सा सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम किया, यानी नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का, सालिहीन का, गैरी मंदूब अलैहिम, उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, कौन है वो यहूद, और उन लोगों का भी नहीं जो गुमराह हुए यानी नसारा। आज यहूद और नसारा की तहजीब आज थर्टी फर्स्ट को जो है वो गया उसको ये मनाने के लिए हमारा नौजवान घर से बाहर जाता है सफर करता है, खुदा ना खास्ता ऐसी हालत में कोई हादसा पेश आया मौत आई तो क्या वो मौत ईमान पर कही जाएगी, क्या वो मौत ईमान पर कही जाएगी। हमारी शरीयत ने तो हमारे यहाँ जो तकरीबें और खुशियों के दिन रखे उसमें भी ऐसा गलत काम करने की इजाजत नहीं, बल्कि दो रकात और दिनों के मुकाबले में मजीद वाजिब करी, ईद के दिन दो रकात मजीद वाजिब, ईद के दिन अल्लाह की ज्यादा इबादत करो। और ये गैरों की जो है इन तकरीबों को और इनके इस तरह के त्योहारों को इस तरह खुशी के साथ मनाना ये फिका की किताबों में ये ईमान सोच लिखा है, इसके नतीजे में नऊज़ुबिल्लाह आदमी ईमान से क्या हो जाता है महरूम हो जाता है। कुरान में बारी ताला फरमाते हैं जिन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानियां करके अपनी जान पर जुल्म किया, ये अल्लाह के बंदो तुम जरा भी उनकी तरफ मायल मत होना वरना जहन्नम की आग तुमको छू लेगी। ये इन गुमराह कौमों के रास्तों को इख्तियार करने के नतीजे में आदमी कहां से कहां पहुंचता। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती में वाकया लिखा है, एक अल्लाह वाले थे और अच्छे हाल इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कब्र में है, बहुत अच्छी यानी अच्छा गया बिस्तर है और हरी भरी हरा भरा बाग है, सब कुछ है, सब अच्छी हालत, लेकिन उनके होश के ऊपर एक सपोलिया है। ख्वाब देखने वाले ने कहा ये आपकी ये दूसरी हालत, आपका बिस्तर शानदार, आपका ये बाद में है, सब कुछ है, ये सब हो जाए कैसा। बुजुर्ग ने कहा एक मरतबा होली के मौके पर मैं पान खाकर जा रहा था, एक मरियल किस्म का गधा सामने आया तो मुझे शरार सूझी। मैंने इसको यूं कहा, तुझे किसी ने नहीं लगा, लाभ मैं तुझे रंग दू, और ये कहकर पान की पीक मैंने उसके ऊपर डाली, उसकी सजा है जो मुझे भुगतना। तो ये गैरों के तरीकों को इख्तियार करना और उसको पसंद करना ये अल्लाह के गजब को लाने वाली चीज है। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पाकीज़ा अखलाक की हमें तालीम दी है उनको इख्तियार करने के लिए कोशिश करो, मेहनत करो। यही वो चीज है जो दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है और आखिरत में भी। और जिन बुरे अखलाक, बुरे आदात, बुरी खसलतों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है उनसे अपने आप को बचाओ, ऐसे माहौल से दूर रहो, आपस में उसका मुजाकरा होना चाहिए और ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए बाकायदा तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए। जरूरत है कि हमारा नौजवान इसकी तरफ तवज्जो करे। अल्लाह ताला ने ये नौजवानी की जो सलाहियतें अता फरमाई है वो इसलिए नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी की जाए। अल्लाह की जवानी में जो जवान अल्लाह की इताअत और फरमाबरदार करता है, फरमाबरदारी करता है, अल्लाह को वो बड़ा प्यारा होता है। मैंने शुरू में एक हदीस का हवाला दिया था कि कयामत के रोज जब अल्लाह के साये के अलावा और कोई साया नहीं होगा, सात आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपने साये में जगह देगा, उनमें वो भी है शाबुल नशा की इबादत अल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की फरमाबरदारी में पला और बड़ा, यानी उसकी जवानी में इसने किसी गुनाह का इंतकाल नहीं किया। अल्लाह हमारे नौजवानों को पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए और उनकी सलाहियतों को अल्लाह ताला अपने दीन के लिए इस्तेमाल करे। दुआ कर लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक ला इलाहा इल्लल्लाह व ला अहदु الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بقدر ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى يا الله وهماري گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے دربدر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پاکیزہ اخلاق و عادات کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے اللہ ان کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اختیار کرنے کو ہمارے لیے آسان فرما اور جن گندے عادات و اقوال سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی ترغیب فرمائی ہے ان کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو تو اپنے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کر لے۔ اللہ ان کو اپنا محبوب و مقبول بنا دے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ تیری اطاعت و فرمانداری اور تیرے کرنے کی سربلندی میں گزرے ایسی ان کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کی صلاحیتوں کو دین کی کلمہ کی سربلندی کے لیے استعمال فرما لے۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہر قسم کی برائیوں سے غیروں کی نقالی اور اللہ غیروں کی گمراہیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے سے ہم میں سے ہر ایک کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اس کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ڈالے۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما۔ مقدمات میں محبوسوں کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ तेरे हबीब पाक का उम्मत ही जहाँ कहीं भी हो उसके ईमान और इस्लाम की जानो माल की इज्जत आबरू की अहल आयाल की तिजारत दरमान और कारोबार की हर चीज की पूरी पूरी अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई उससे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा और जिन शरों और बुराइयों से पना चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ मौजूद और शरीफ तेरे तमाम बंदों और बंदियों की जायज और नेक मुरादें पूरी फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाह आज तक तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए, अब भी आइंदा भी महरूम फरमा। पर बना तकबल मीना انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.